अध्याय 48 कनान का विभाजन। यह अध्याय यहोशू 10 आयत 40 से 43, 11, 14, 22 पर आधारित है। बेथोरोन में विजय के तत्पश्चात दक्षिणी कनान को अधिकृत किया गया। यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण के देश और तराई के देश, इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा इसराइलियों की ओर से लड़ा। और यहोशू सब इसराइलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया। इसराइलियों को मिली सफलता से घबराकर उत्तरी फिलिस्तीन के गोत्रों ने उनके विरुद्ध संधि कर ली। इस संघ का मुखिया था हासोर का राजा याबीन। हासोर मेरोम तालाब के पश्चिम में स्थित था और वे अपनी सेना समेत मिलकर निकल आए। यह सेना उन सभी सेनाओं से विशाल थी जिसका सामना इसराइलियों ने कनान में इससे पहले कभी किया हो। सेना जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत थी, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। और जब ये सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इसराइलियों से लड़ने को मेरोम नामक ताल के पास आकर एक संघ छावनी डाली। मेरोम नामक ताल के पास पहुंचकर यहोशू संघ की छावनी पर टूट पड़ा और उनको पूरी तरह पराजित कर दिया, और यहोवा ने उनको इसराइलियों के हाथ में कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें मार दिया और उनका पीछा किया और उनमें से किसी को जीवित नहीं छोड़ा। रथ और घोड़े जो कनानियों का गौरव और अभिमान थे, इसराइल द्वारा गृहीत नहीं किए जाने थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनके घोड़ों को लंगड़ा कर दिया गया और रथों को जला दिया गया, जिससे वो युद्ध में प्रयोग किए जाने योग्य नहीं रहे। इसराइलियों को रथों या घोड़ों में नहीं, वरन परमेश्वर उनके प्रभु के नाम में विश्वास रखना था। एक एक करके नगरों को ले लिया गया और संघ के गढ़ हासोर को भस्म कर दिया गया। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन अंत में यहोशू कनान प्रदेश का स्वामी हुआ और देश को लड़ाई से शांति मिली। यद्यपि कनानियों को शक्तिहीन कर दिया गया था, लेकिन वे पूरी तरह निर्वासित नहीं हुए थे। पश्चिम में पलिश्ती अभी भी समुद्र तट पर एक उपजाऊ तराई पर अधिकार जमाए हुए थे, और उत्तर में सीदोनियों का अधिकृत क्षेत्र था। दक्षिण में मिस्र की ओर का देश अभी भी इसराइल के शत्रुओं के अधिकार में था। फिर भी यहोशू युद्ध को जारी नहीं रखना चाहता था। इसराइल की कमान को तजने से पूर्व इस महान अगवे को एक और काम करना था। संपूर्ण देश, दोनों भाग, जो जीत लिया गया था और जो अभी भी अनधिकृत था, गोत्रों में बांटा जाना था, और अपनी धरोहर पर पूर्ण रूप से अधिकार करना प्रत्येक गोत्र का कर्तव्य था। लोगों द्वारा परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होने की पुष्टि होने पर वो उनके शत्रुओं को उसके सामने से हटा देगा, और परमेश्वर ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे उसकी वाचा के प्रति सत्यनिष्ठ हुए तो वह उन्हें इससे भी बड़ा अधिकार क्षेत्र देगा। यहोशू को महायाजक एलियाजर और गोत्रों के मुखियाओं के साथ देश का बंटवारा सौंपा गया। प्रत्येक गोत्र का क्षेत्र पर्चियों द्वारा निर्धारित किया जाना था, और उसी ने बंटवारे पर ध्यान देने के लिए प्रत्येक गोत्र से एक एक प्रधान नियुक्त किया था। लेवी का कुल, जो पवित्र स्थान की सेवा टहल के लिए समर्पित थे, उनकी गिनती इस आवंटन में नहीं की गई, वरन देश के विभिन्न भागों से 48 शहर धरोहर के रूप में लेवियों को सौंपे गए।
भूखंड का बंटवारा होने से पहले कालेब अपने गोत्र के प्रधानों के साथ एक विशेष मांग को लेकर आगे आया। यहोशू को छोड़कर अब कालेब इसराइल में सबसे वृद्ध पुरुष था। गुप्तचरों में से केवल कालेब और यहोशू ही थे जो प्रतिज्ञा के देश से शुभ समाचार लाए थे, और जिन्होंने परमेश्वर के नाम में उस पर चढ़ाई करके उसे अधिकृत करने को प्रोत्साहित किया। अपनी सत्यनिष्ठा के प्रतिफल के रूप में कालेब ने यहोशू की उस समय की गई प्रतिज्ञा का स्मरण करवाया। तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। इसलिए उसने निवेदन प्रस्तुत किया कि उसे हेब्रोन का आधिपत्य दिया जाए। यहां कई वर्षों तक अब्राहम, इसहाक और याकूब का घर था, और यहीं मकपेला की गुफा में उन्हें मिट्टी दी गई थीं। हेब्रोन अनाकवंशियों का केंद्र था, जिनके डरावने रूप रंग ने गुप्तचरों को बुरी तरह भयभीत कर दिया था और उनके द्वारा समस्त इसराइल के साहस को नष्ट कर दिया था।
अन्य स्थानों से हटकर कालेब ने परमेश्वर की सामर्थ में विश्वास रखते हुए अपनी धरोहर के लिए इस स्थान को चुना। जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, उस समय से मुझे 45 वर्ष तक जीवित रखा है। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझमें था, उतना बल अभी तक मुझमें है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझमें सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझमें सामर्थ है। इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गण वाले नगर भी है। यदि ऐसा है तो यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। यहूदा के विशिष्ट व्यक्तियों ने इस निवेदन का समर्थन किया। देश के बंटवारे के लिए नियुक्त कालेब ने स्वयं अपनी मांग को प्रस्तुत करने में इन पुरुषों को अपने साथ लिया, ताकि ऐसा प्रतीत न हो कि उसने स्वार्थपूर्ण लाभ के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया। उसकी मांग को तत्काल स्वीकृति प्रदान की गई। इस शक्तिशाली गढ़ की विजय किसी और के सुपुर्द करना सुरक्षित नहीं था। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। क्यों वो पूरी रीति से इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का अनुगामी था। कालेब का विश्वास अभी भी वैसा ही था जैसा तब था जब उसकी साक्षी ने गुप्तचरों की झूठी सूचना का खंडन किया था। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास किया कि वो उसके लोगों को कनान का स्वामित्व देगा, और इसमें वो परमेश्वर का पूर्ण रूप से अनुगामी रहा था। अपने लोगों के कष्ट और उनकी निराशाओं में भागीदार होते हुए उसने भीड़ में अपने लोगों के साथ लंबे समय तक भटकने को सहन किया था, और फिर भी शिकायत न की, वरन परमेश्वर की करुणा की प्रशंसा की जब उसने उसको बीहड़ में सुरक्षित रखा जबकि उसके भाई मारे गए। कनान प्रवेश के समय से युद्ध के वर्षों के दौरान सभी कठिनाइयों, संकटों और बीहड़ में भटकने के दौरान आई विपत्तियों के मध्य परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा, और अब 40 वर्ष बाद भी उसकी शक्ति ज्यों की त्यों थी। उसने वो भूखंड नहीं मांगा जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई थी, वरन वो प्रदेश मांगा जिसका दमन करना गुप्तचरों ने असंभव सोचा था। परमेश्वर की सहायता से वो अपने गढ़ को ही दैत्यों से छीनने वाला था, जिनकी शक्ति ने इज़राइल के विश्वास को हिलाकर रख दिया था। कालेब का निवेदन किसी ख्याति या प्रशंसा से प्रेरित नहीं था। ये साहसी अनुभवी योद्धा लोगों को वो उदाहरण देना चाहता था जिससे परमेश्वर का आदर हो, और अभी गोत्रों को प्रोत्साहित करना चाहता था कि वे उस देश को जिसे उनके पूर्वजों ने दुर्जय माना था पूर्णतया अधिकृत करें। कालेब ने उस मीरास को प्राप्त किया जिसमें उसका हृदय 40 वर्षों से लगा था, और इस विश्वास से कि परमेश्वर उसके साथ था, उसने वहां से अनाक के 3 पुत्रों को भगा दिया। अपने और अपने घराने के लिए धरोहर सुरक्षित करके उसका उत्साह कम नहीं हुआ। वो अपनी धरोहर का ही आनंद उठाने में संतुष्ट नहीं हुआ, वरन परमेश्वर की महिमा और देश की भलाई के लिए और देशों पर विजय प्राप्त करने का कठोर प्रयत्न किया।
कायर और विरोधी बीहड़ में नष्ट हो गए थे, लेकिन धर्मी गुप्तचरों ने एशकोल के अंगूर खाए। प्रत्येक को उसके विश्वास के अनुसार दिया गया। अविश्वासियों ने अपनी आशंकाओं को परिपूर्ण होते देखा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बावजूद उन्होंने घोषणा की कि कनान का उत्तराधिकारी होना असंभव था, और वो उन्हें नहीं मिला। लेकिन जिन्होंने आने वाली कठिनाइयों पर सर्वशक्तिमान सहायक के बल से अधिक ध्यान न देकर परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने उस समृद्ध देश में प्रवेश किया। विश्वास के द्वारा ही इन वृद्ध सूरमाओं ने राज्य जीते। तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, युद्ध में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। इब्रानियों 11 आयत 33-34। वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना 5 आयत 4। देश के विभाजन से संबंधित एक अन्य अनुरोध ने उस भावना को प्रकट किया जो कालेब की मांग की भावना से बहुत भिन्न था। ये यूसुफ के बच्चों अर्थात एप्रैम के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुसंख्य होने के आधार पर इन गोत्रों ने भूखंड के दुगने भाग की मांग की।
जो भाग उनके लिए मनोनीत था वो देश में सबसे उन्नत था और शारोन की उपजाऊ तराई उसी का भाग थी। लेकिन तराई के कई मुख्य नगर अभी भी कनानियों के अधिकार में थे और उनके अधिकार क्षेत्र को जीतने के लिए खतरों और श्रम से वे हिचकिचा रहे थे और वे जीते हुए प्रदेश में से अधिकार क्षेत्र का अतिरिक्त भाग चाहते थे। एप्रैम का गोत्र इसराइल में सभी गोत्रों से बड़ा था और यहोशू इसी गोत्र का सदस्य था और इसलिए उसके सदस्य स्वाभाविक रूप से स्वयं को विशेष महत्व का अधिकार मानते थे। हम तो गिनती से बहुत हैं, फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? लेकिन कठोर अगवे से कठोर न्याय के अलावा और किसी निर्णय की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। उसका उत्तर था, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रैम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा है, तो परिज्जियों और रपाइयों का देश है जो जंगल में है, उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। उनके उत्तर में शिकायत का वास्तविक कारण प्रकट हुआ। उनमें कनानियों को मार भगाने के लिए विश्वास और साहस का अभाव था। उन्होंने कहा, वो पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है और उन सबों के पास लोहे के रथ है। इसराइल के परमेश्वर का सामर्थ्य उसके लोगों को प्रतिज्ञा द्वारा प्राप्त था और यदि एप्रैमी कालेब के विश्वास जैसे विश्वास और साहस के स्वामी होते तो कोई भी शत्रु उनके सम्मुख खड़े नहीं रह सकते थे। खतरों और कठिनाइयों से बचकर निकल जाने की उनकी प्रकट इच्छा को यहोशू ने दृढ़ता से लिया। तुम लोग गिनती में बहुत हो और तुम सामर्थ्यवान भी हो, चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। इस प्रकार उनके तक उन्हीं पर पलट दिए गए। संख्या में बहुत होने के कारण, जैसा कि उन्होंने कहा, वे अपने भाइयों के समान अपना रास्ता निकालने में पूर्णतया सक्षम थे। परमेश्वर की सहायता के होते हुए उन्हें लोहे के रथों से डरने की आवश्यकता नहीं थी। अभी तक गिलगल देश का मुख्यालय और मिलाप वाले तंबू अर्थात पवित्र मंडप का स्थान रहा था, लेकिन अब पवित्र मंडप को उसके स्थायी स्थान पर स्थानांतरित करना था। यह स्थान था शीलो, जो एप्रैम के भाग में एक छोटा सा नगर था। यह देश के मध्य में था और सभी गोत्रों की आसान पहुंच में था। यहां देश का भाग पूर्णतया अधिकृत कर लिया गया था, जिससे कि उपासकों को सताया न जाए। फिर इसराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठा होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया। जो गोत्र अभी भी वहां डेरा डाले थे, गिलगल से मिलाप वाले तंबू के हटाए जाने पर उसके पीछे हो लिए और उन्होंने शीलो के पास अपने तंबू खड़े किए। यहां पर ये गोत्र तब तक रहे जब तक वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में बट न गए। शीलो में संदूक 300 वर्ष तक रहा, जब तक कि एली के कुल के पापों के कारण ये पलिश्तियों के हाथों में पड़ गया और शीलो नष्ट हो गया। संदूक फिर कभी यहां के मिलाप वाले तंबू में लौटा कर नहीं लाया गया। पवित्र स्थान की विधि यरूशलेम के मंदिर में स्थानांतरित की दी गई और शीलो महत्वहीन हो गया। जहां ये पहले था, वहां अब केवल अवशेष हैं। बहुत समय तक इसका प्रयोग यरूशलेम के लिए चेतावनी के रूप में किया गया। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इसराइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। यर्मिया 7:12-14। जब बेश का बौटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया और सभी गोत्रों को उनकी धरोहर आवंटित कर दी गई, तब यहोशू ने अपनी मांग प्रस्तुत की। जैसे कि कालेब को दी गई थी, उसी प्रकार यहोशू को भी मीरास की एक विशेष प्रतिज्ञा दी गई थी, किंतु उसने सिवाय एक नगर के किसी विस्तृत प्रांत की मांग नहीं की। उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया और वो उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। इस नगर का नाम तिम्नत्सेरह पड़ा, जिसका अर्थ है बचा हुआ भाग। और जो विजेता की निस्वार्थ भावना और शिष्ट आचरण का स्थायी साक्षी था, वो विजेता जिसने विजय से प्राप्त लूट को सबसे पहले लेने के बजाय अपनी मांग को तब तक टाले रखा जब तक कि उसके लोगों में सबसे दीन व्यक्ति की मांग पूरी नहीं हुई। लेवियों को आवंटित शहरों में से 6 शहर यर्दन के दोनों किनारों पर तीन शहरों को शरण के नगरों के रूप में चुना गया। इन शहरों का चयन मूसा के आदेश से किया गया था, ताकि जो कोई किसी को भूल से मारकर खूनी ठहरा हो वो वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक वो मार न डाला जाए। ये करुणामयी प्रयोजन निजी प्रतिशोध की प्राचीन परंपरा के कारण आवश्यक था, क्योंकि इस परंपरा के अनुसार हत्यारे का दंड उसके सबसे निकटतम परिजन या मृतक के अगले उत्तराधिकारी पर डाल दिया जाता था। जिन मामलों में दोष स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता था उनमें न्यायियों के द्वारा सुनवाई के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रतिशोध अपराधी का कहीं भी पीछा कर सकता था और जहां भी अपराधी मिले उसे मृत्यु के घाट उतार सकता था। परमेश्वर ने इस परंपरा का उस समय उन्मूलन करना उपयुक्त नहीं समझा, लेकिन उसने अनजाने में प्राण लेने वालों की सुरक्षा निश्चित करने का प्रावधान रखा।
शरण के शहरों का इस तरह वितरण किया गया कि देश के प्रत्येक भाग से आधे दिन की यात्रा की दूरी पर था। वहां तक ले जाने वाली सड़कों को हमेशा अच्छी स्थिति में रखा जाना था। पूरे रास्ते बड़े और साधारण अक्षरों में शरण शब्द धारण किए हुए मार्गपट खड़े किए जाने थे, ताकि भागने वाले को क्षण भर का भी विलंब न हो। चाहे इब्री, चाहे अपरिचित या पलायक, सभी इस प्रावधान का लाभ उठा सकते थे। लेकिन जहां निर्दोष को उतावलेपन में मारा नहीं जाना था, वहीं दोषी को दंड से मुक्ति नहीं देनी थी। पलायकों की उचित अधिकारियों द्वारा सुनवाई की जानी थी और केवल सुविचारित हत्या का दोषी न पाए जाने पर ही उसे शरण के शहर में सुरक्षा प्रदान की जानी थी। सुरक्षा के हकदारों को चुने हुए शरण स्थान की सीमाओं के अंदर रहने की शर्त पर ही सुरक्षा प्राप्त होती थी। यदि कोई निर्धारित सीमाओं को लांग जाए और लहू के प्रतिशोधी द्वारा पाया जाए तो उसे परमेश्वर के प्रावधान का अनादर करने का दंड उसका प्राण होगा। लेकिन महायाजक की मृत्यु हो जाने पर शरण के नगरों के सभी शरणार्थियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में लौट जाने की स्वतंत्रता थी। हत्या की सुनवाई में आरोपी को एक साक्ष्य के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता था, भले ही उसके विरोध में संयोगवश प्रमाण बहुत ठोस हो। परमेश्वर का निर्देश था, जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वो साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्ष्य की साक्षी से कोई न मारा जाए। इसराइल के लिए यह निर्देश मसीह ने मूसा को दिए थे। जब वो पृथ्वी पर व्यक्ति रूप से अपने अनुयायियों के साथ था, उन्हें यह सिखाते समय कि दोषियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, महान गुरु ने इस सीख को दोहराया कि एक व्यक्ति की साक्षी के आधार पर दंड या मुक्ति न दी जाए। एक ही व्यक्ति के विचार और दृष्टिकोण विवादास्पद प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकते। इन सभी मामलों में दो या दो से अधिक का सहयोगी होना अनिवार्य था। उन्हें एक साथ उत्तरदायित्व को निभाना है कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। मत्ती 8:16। यदि वह जिसे हत्या के लिए सुना गया हो दोषी प्रमाणित हो तो कोई भी प्रायश्चित या फिरौती उसे नहीं बचा सकते थे। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। उत्पत्ति 9:6। जो खूनी प्राणदंड के योग्य ठहरे उससे प्राणदंड के बदले में जुर्माना न लेना वो अवश्य मार डाला जाए। परमेश्वर की आज्ञा थी उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। गिनती 35:31, निर्गमन 21:24, गिनती 35:33। राष्ट्र की सुरक्षा और पवित्रता की मांग थी कि हत्या के पाप को कठोर दंड दिया जाए। मानव का प्राण जो केवल परमेश्वर द्वारा देय है गंभीरता से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। परमेश्वर के प्राचीन लोगों के लिए नियुक्त शरण स्थान मसीह द्वारा प्रदान की गई शरण का प्रतीक थे। जिस दयावान उद्धारकर्ता ने शरण के इन सांसारिक शहरों को नियुक्त किया उसी ने अपना लहू बहाकर परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघनकर्ताओं के लिए एक निश्चित विश्राम स्थल का प्रबंध किया।
जिसमें वे दूसरी मृत्यु से सुरक्षा के लिए भाग सकते थे। जो भी क्षमा के लिए उसके पास जाता है, उसे कोई भी शक्ति उसके हाथों से नहीं ले सकती। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, लेकिन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है, ताकि दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने के लिए इसलिए छोड़े हैं कि जो आशा उनके सामने है प्राप्त कर सके। रोमियो 8 आयत 1 34, इब्रानियो 6 आयत 18। शरण के नगर को दौड़ने वाला विलंब नहीं कर सकता था। परिवार और व्यवसाय पीछे छोड़ दिए गए। अपने प्रियों को अलविदा कहने के लिए समय नहीं था। उसका जीवन दांव पर लगा था और प्रत्येक अन्य रुचि को उस एक लक्ष्य पर न्यौछावर करना था, सुरक्षा के स्थान पर पहुंचना। थकान को भुला दिया गया, कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया गया। पलायक ने गति धीमी करने का दुस्साहस नहीं किया जब तक कि वो उस शहर की सीमा के अंदर न पहुंच गया।
पाप को हमेशा की मृत्यु से सामना कराया जाता है जब तक कि वह मसीह में छुपने का स्थान नहीं ढूंढ लेता।
और जिस प्रकार टालना और बेपरवाही पलायक को उसके जीवित रहने के एक अवसर से वंचित कर सकते हैं, उसी प्रकार विलंब और उदासीनता आत्मा के विनाश का कारण हो सकते हैं। महान शत्रु शैतान परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था के प्रत्येक उल्लंघन करने वाले के मार्ग में होता है, जो खतरे से अनभिज्ञ होता है और अनंत शरण स्थान में शरण नहीं लेता, वह विनाशक का शिकार हो जाएगा। जो कैदी किसी भी समय शरण के नगर से बाहर चला जाता था, उसे लहू के प्रतिशोधी के लिए छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार लोगों को उनके सुरक्षा के लिए परमेश्वर द्वारा बनाए गए कि पाप की क्षमा के लिए पापी मसीह में विश्वास करें, उसे विश्वास और आज्ञाकारिता द्वारा उसमें बना रहा है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। इब्रानियों 10 आयत 26-27। इज़राइल के दो गोत्र गाद और रूबेन और मनश्शे का आधा गोत्र यर्दन पार करने से पहले ही अपनी मीरास प्राप्त कर चुके थे। खेतीहरों को अपने मवेशियों और भेड़ बकरियों के लिए विस्तृत चरागाह प्रदान करते हुए गिलियाद और बाशान के घने जंगल और ऊंचाई पर तराई दी गईं, जिसमें वह आकर्षण थे जो कनान में नहीं थे, और यहां बसने के इच्छुक इन ढाई गोत्रों ने यर्दन पार अपने भाइयों का साथ देने के लिए हथियारबंद पुरुषों का अपनी ओर से बराबर का भाग जुटाने की और उनका लड़ाई में साथ देने की प्रतिज्ञा की थी, जब तक कि वे अपने निज भाग में प्रवेश नहीं कर लेते। इस कर्तव्य का उन्होंने निष्ठापूर्वक पालन किया, रूबेन गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग। युद्ध के हथियारों से लैस संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो की तराई में पहुंचे। यहोशू 4 आयत 12-13। वर्षों तक उन्होंने अपने भाइयों के पक्ष में वीरता से युद्ध किया था। अब समय आ गया था कि वे अपने निज भाग के देश में जाएं। जैसे उन्होंने संग्रामों में अपने भाइयों के साथ एका किया था, वैसे ही वे युद्ध से प्राप्त सामग्री में भागीदार बने, और वे बहुत से पशु और चांदी सोना पीतल लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए लौटे। जिस सब को उन्होंने उनके परिवारों और भेड़ बकरियों के साथ पीछे रहने वालों के साथ बांटा। जब यहोशू और अन्य अगुओं के मन अभी चिंतायुक्त पूर्वाभास से उत्पीड़ित थे, उन्हें एक अद्भुत समाचार मिला। यर्दन के किनारे उस स्थान के पास जहां से इज़राइली चमत्कारी रूप से पार हुए थे, उन ढाई गोत्रों ने एक महान वेदी को खड़ा किया था, जो शीलो की मेलबली की वेदी के समान थी। उस धर्म स्थान पर अन्य आराधना का संस्थापन परमेश्वर के नियमानुसार प्रतिबंधित था और मृत्युदंड के योग्य था। यदि इस वेदी का ऐसा लक्ष्य था, तो इसे बने रहने देने की अनुमति देने से लोग सच्चे विश्वास से दूर हो जाते। प्रजा के प्रतिनिधि शीलों में एकत्रित हुए और कोध और उत्साह के आवेग में उन्होंने अपराधियों पर चढ़ाई करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अधिक सावधानी से चलने वालों के कहने पर यह निर्णय लिया गया कि युद्ध से पहले उन ढाई गोत्रों के पास उनसे उनके आचरण का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा जाए। प्रत्येक गोत्र में से एक एक यानी प्रधानों को चुना गया। पिनिहास, जिसने पोर के विषय में अपनी लगन से स्वयं को विशिष्ट प्रमाणित किया था, उनका मुखिया बना। इतने गंभीर संदेहास्पद कृत्य को बिना स्पष्टीकरण दिए करने में ढाई गोत्रों ने गलती की थी। प्रतिनिधियों ने यह मानते हुए कि उनके भाई दोषी थे, उनकी कड़ी निंदा की। उन्होंने उन पर परमेश्वर के प्रति विरोध करने का आरोप लगाया और उन्हें स्मरण करने को कहा कि किस तरह बालपोर के साथ जुड़ जाने पर इसराइल पर दंडाज्ञा भेजी गई थी। पिनिहास ने गादियों और रूबेनियों से कहा कि यदि वे उस देश में बलिदान की वेदी के बिना वास करने को तैयार नहीं होंगे, तो ही वे यर्दन पार अपने भाइयों के विशेषाधिकारों और निज भाग में भागीदार हो सकेंगे।
उत्तर देते हुए आरोपितों ने स्पष्टीकरण दिया कि वेदी बलिदान के उद्देश्य से नहीं, वरन केवल एक साक्ष्य के रूप में स्थापित की गई थी, और यद्यपि वे नदी के द्वारा अलग हो गए थे, लेकिन उनका विश्वास वही था जो कनान में उनके भाइयों का था। उन्हें भय था कि आने वाले समय में उनके बच्चों को मिलाप वाले तंबू से बाहर रखा जाएगा, मानो इसराइल में उनका कोई भाग न हो। उस समय ये वेदी, जो शीलो में परमेश्वर की वेदी के स्वरूप में खड़ी की गई थी, इस बात की साक्षी होगी कि इसके निर्माता भी जीवित परमेश्वर के आराध्य थे। अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रतिनिधियों ने इस स्पष्टीकरण को ग्रहण किया, और ये समाचार लेकर वे तुरंत उनके पास लौटे जिन्होंने उन्हें भेजा था। युद्ध करने के सभी विचारों को त्याग दिया गया और प्रजा ने मिलकर आनंद मनाया और परमेश्वर की स्तुति की। गादियों और रूबेनियों ने अब वेदी पर एक शिलालेख रखा जो उसके निर्माण के उद्देश्य की ओर संकेत करता था, और उन्होंने कहा, ये हमारे बीच साक्षी है कि परमेश्वर ही यहोवा है। इस प्रकार उन्होंने प्रयत्न किया कि भविष्य में कोई मिथ्याबोध न हो और प्रत्याशित प्रलोभन का कारण दूर हो जाए। कितनी बार उनमें भी जो नेक इरादों से प्रेरित होते हैं, छोटी सी गलतफहमी के कारण गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, और कृतज्ञता और सहनशीलता के अभाव के परिणाम कितने गंभीर और घातक हो सकते हैं। दसों गोत्रों ने स्मरण किया कि किस प्रकार आकान के मामले में परमेश्वर ने उनके बीच विद्यमान पापों को खोज निकालने में सतर्कता के अभाव की निंदा की थी। अब उन्होंने तत्परता और गंभीरता से कार्य करने का दृढ़ संकल्प किया, लेकिन पहली गलती को दूर करने के लिए दूसरी ओर वे ज्यादती कर बैठे। इस विषय में तथ्यों को जानने के लिए शिष्टापूर्वक जांच पड़ताल करने के बजाय उन्होंने अपने भाइयों की निंदा की और दोष लगाया। यदि गादियों और रूबेनियों ने उसी भावना से प्रत्युत्तर दिया होता, तो उसका परिणाम युद्ध भी हो सकता था। एक ओर तो पाप के संबंध में ढीलेपन को दूर रखना है, पर दूसरी ओर निराधार संदेह और कठोर दंडाज्ञा से किनारा करना भी उतना ही आवश्यक है। कई लोग अपने व्यवहार के संदर्भ में थोड़ी सी उलाहना के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, लेकिन उनके साथ जिन्हें वे गलत समझते हैं, उनका व्यवहार बहुत कठोर होता है। दोषारोपण और निंदा से कभी भी किसी को अनुचित स्थिति से सुमार्ग पर नहीं लाया गया। इसके विपरीत, इस प्रकार कई सही मार्ग से दूर हो जाते हैं और दोष सिद्ध के प्रति उनके हृदय कठोर हो जाते हैं। दया की भावना और एक विनम्र सहिष्णु आचरण पापी को बचा सकता है। रूबेनियों और उनके साथियों द्वारा दर्शाई गई बुद्धिमत्ता अनुसरण करने योग्य है। निष्ठापूर्वक सच्चे धर्म के मनोरथ को बढ़ावा देने के प्रयत्न में उन्हें गलत समझा गया और उनकी बड़ी निंदा की गई, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिरोध प्रकट नहीं किया। अपने बचाव का प्रयत्न करने से पहले उन्होंने विनम्रता और धैर्य के साथ अपने भाइयों द्वारा लगाए आरोपों को सुना और फिर अपने उद्देश्य को विस्तारपूर्वक समझाया और अपनी दोषहीनता प्रकट की। इस प्रकार जो कठिनाई गंभीर परिणाम की चुनौती दे रही थी, वो मैत्रीपूर्ण ढंग से शांत हो गई। गलत आरोप लगाए जाने पर भी जो सही होते हैं, वे शांत और विचारशील रह सकते हैं। परमेश्वर उस सब से परिचित होता है जो मनुष्य द्वारा गलत समझा जाता है या गलत रूप में बताया जाता है, और हम इसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ सकते हैं। जैसे उसने आकान के पाप को ढूंढ निकाला, इसी प्रकार जो अपना विश्वास उसमें रखते हैं उनके ध्येय का वो समर्थन करता है। जो मसीह के आत्मा से प्रेरित होते हैं वे उस प्रेम के धनी होते हैं जो चिर सहिष्णु और दयावान होता है।
ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोगों के बीच में भाई समान प्रेम और एकता बनी रहे।
क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व मसीह की प्रार्थना थी कि उसके अनुयायी एक हों, जैसा वो अपने पिता के साथ एक है, ताकि जगत यह विश्वास कर सके कि परमेश्वर ने उसे भेजा है। ये सबसे अधिक मर्मभेदी और अत्युत्तम प्रार्थना प्रत्येक युग में पहुंची, क्योंकि उसने कहा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यूहन्ना 17:20। हमें सत्य के एक भी सिद्धांत का त्याग नहीं करना है, वरन हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम एकता की स्थिति पर पहुंचे। यही हमारे अनुयायी होने का प्रमाण है। यीशु ने कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13:35। प्रेरित पत्रस कलीसिया को प्रबोधित करता है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। पहला पत्रस 3:8-9।